नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर शोर शराबे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक स्थगित। सरकार ने कहा मूल्य वृद्धि पर वाम दलों की मांग पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय का 2G स्पेक्ट्रम मामले में 5 बड़े कारपोरेट अधिकारियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर छोड़ने का आदेश। भारत और संयुक्त अरब अमारात में सुरक्षा सहयोग और सजायाफ्ता लोगों के आदान प्रदान से संबंधित समझौतों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर। सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट का रुख, एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट। और क्रिकेट में मुंबई में तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए वेस्टइंडीज के पहली पारी में चाय के समय तक 4 विकेट पर 494 रन। दोपहर समाचार में कनक लता के साथ मैं राजेंद्र चुग। इस अंक में आप स्वास्थ्य और चिकित्सा पर समाचार फीचर भी सुनेंगे। पहले समाचार कनक लता से।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बढ़ती कीमतों और कई अन्य मुद्दों पर शोर शराबे के कारण आज लगातार दूसरे दिन स्थगित कर दी गई। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि विपक्षी दल अपनी इस मांग पर अड़े हुए थे कि इस मुद्दे पर मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत बहस कराई जाए। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अपनी इस मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। इस पर सदन की कार्यवाही दिन में 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बैठक फिर शुरू होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन न देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। कई अन्य सदस्यों ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने की मांग की और अलग तेलंगाना राज्य के गठन जैसे कई अन्य मुद्दे भी उठाए। राज्यसभा में भी कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। वामदलों के उत्तेजित सदस्यों ने मूल्य वृद्धि पर बहस की मांग को लेकर शोर शराबा किया। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। सदन में तेलंगाना का मुद्दा भी उठाया गया। वामदलों ने कहा है कि वे तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जब तक सरकार मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत महंगाई पर चर्चा के लिए सहमत नहीं होती। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि पिछले 2 सत्रों में इस बारे में बहस हो चुकी है लेकिन सरकार ने महंगाई से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मत विभाजन की व्यवस्था वाले नियम के तहत बहस कराने से ही सरकार को बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।
जब तक सरकार कुछ ठोस रूप से करने के लिए दावा नहीं करेगी संसद में, वो दावा करवाने के लिए जो दबाव है वो दबाव तभी हो पाएगी जब ऐसे रूल के तहत चर्चा हो जहां पर वोटिंग हो और उस वोटिंग के दबाव के चलते हुए सरकार कुछ ठोस कदम डिक्लेयर करे कि क्या कदम उठाएगी।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वासुदेव आचार्य ने कहा कि सरकार को स्थगन प्रस्ताव के तहत बहस के लिए सहमत होना चाहिए।
हम लोग ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिए थे, कल भी दिए थे, आज भी हमने दिया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, हम कल से मांग कर रहे हैं कि सरकार काम रोको प्रस्ताव के तहत ये महंगाई के ऊपर चर्चा करे।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलने देने के पक्ष में है बशर्ते सरकार उचित नियमों के तहत चर्चाएं करे। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर अड़ियल रुख अपनाने और विपक्ष की मांग पर कोई ध्यान न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने सहयोगी दल सदन में बाधा डाल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संसद चले और नियमों के तहत चर्चा हो। कांग्रेस इस सत्र को भी अपने जिद के हवाले न करे, विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद को चलाने की कोशिश करे।
सरकार ने कहा है कि मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा नहीं हो सकती जिसकी वामदल मांग कर रहे हैं। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय मामलों के मंत्री हरीश रावत ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव के नियमों के अनुसार ताजा घटनाओं से संबंधित मुद्दों पर ही मत विभाजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति लगातार चलने वाला मुद्दा है, हाल का नहीं।
जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का वो है, जैसे एडजर्नमेंट मोशन के विषय में वो बहुत साफ तौर पर कहता है कि एडजर्नमेंट मोशन केवल उसी इशू पर, एक तो इशू क्लियर हो और दूसरा जो है जो रिसेंट अकरिंग का इशू हो उस पर ही जो है एडजर्नमेंट मोशन रेज किया जाता है।
संसदीय मामलों के एक अन्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि वामदलों को मूल्य वृद्धि के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से इस बारे में चर्चा में भाग लेने और महंगाई पर काबू पाने के उपाय सुझाने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने काले धन के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये नोटिस सदन में मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव लाने के वामपंथी दलों के दबाव के ठीक बाद दिया गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे का हल ढूंढने के लिए इन दलों के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के आश्वासन के बाद कल अपने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शायद जोर न दे। सूत्रों ने कहा है कि वामदल भी शायद बिना वोटिंग के प्रावधान के तहत मूल्य वृद्धि पर बहस के लिए तैयार हो सकते हैं। महंगाई सभी लोगों के लिए चिंता का मुद्दा है और इस पर संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस नेता सुश्री गिरिजा व्यास ने जोर देकर कहा है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनहित के कई विधेयक पारित किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है वे इसका फायदा नहीं उठाते। शिवसेना के सदस्यों ने कपास के अधिक खरीद मूल्य के समर्थन में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वे अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। आंध्र प्रदेश के कई सांसदों का अलग तेलंगाना राज्य के समर्थन में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 73 सीमा सड़कों में से 15 सड़कें बनाई जा चुकी हैं। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने आज बताया कि 39 सड़कें 2013 तक बनकर तैयार हो जाएंगी और 19 का निर्माण कार्य 2016 तक पूरा हो जाएगा। श्री एंटनी ने बताया कि वन और वन्य जीव संरक्षण संबंधी मंजूरी मिलने में देरी, दुर्गम इलाके और अनुकूल मौसम न होने के कारण इस कार्य की गति धीमी रही। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। आज संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले महीने के दूसरे सप्ताह में विधेयक को केंद्र मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रोफेसर थॉमस ने बताया कि विधेयक के मसौदे पर सभी राज्य सरकारों के सुझाव मिल गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका मंत्रालय विभिन्न विभागों से इस मसले पर विचार विमर्श कर रहा है। सरकार ने पाकिस्तान या चीन के साथ सीमा के मुद्दे को हल करने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार किया है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने कहा कि ये मुद्दे पूरी तरह से आपसी हैं और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि पाकिस्तान ने 1948 से जम्मू कश्मीर में करीब 78,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर जबरदस्ती और अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। राज्य के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1962 से चीन का कब्जा है। श्री कृष्णा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के 1963 के तथाकथित सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को दे दी थी। श्री असम कृष्णा ने कहा कि भारत की किसी भी जमीन पर बांग्लादेश का कोई अवैध कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पर बरसों से एक देश के लोग दूसरे देश की जमीन पर रह रहे हैं। सरकार विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों को 59 कार्यक्रमों में विलय करने का विचार कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में योजना राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि आयोग ने समाज कल्याण कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाई थी जिसने 147 केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को 59 कार्यक्रमों में विलय कर देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इससे इन कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकेगा। श्री कुमार ने सदन को सूचित किया कि समिति की रिपोर्ट सभी मुख्यमंत्रियों को भेज दी गई है ताकि वे इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। लोक जनशक्ति पार्टी के श्री साबिर अली ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उपसभापति के रहमान खान ने आज घोषणा की कि सभापति ने 15 नवंबर से श्री अली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री अली का कार्यकाल अप्रैल 2014 में पूरा होना था। सरकार ने कहा है कि देश में मौजूदा परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मिता फैलने का कोई खतरा नहीं है। आज लोकसभा में एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि इन संयंत्रों में पर्याप्त एहतियाती उपाय किए गए हैं ताकि विकिरण का कोई बड़ा रिसाव न हो सके। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजस्थान के रावतभाटा में केवल एक परमाणु रिएक्टर को नियमों के अनुसार एहतियाती सुरक्षा जरूरतें पूरी न करने के कारण बंद किया गया है। अन्य सभी 19 चालू रिएक्टरों को उनके निर्धारित समय तक चलाया जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड समय समय पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के कामकाज की समीक्षा करता है और उन्हें निर्धारित समय तक चलाने के लिए लाइसेंस देता है। श्री नारायण स्वामी ने कहा कि परमाणु बिजली संयंत्रों के आसपास के जलाशयों, जमीनी जल संसाधनों, दूध, अंडे, मांस, मछली, सब्जियों और फलों पर रेडियोधर्मिता के असर पर लगातार नजर रखी जाती है। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों ने हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस में कल लगी आग में 7 यात्रियों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल सवेरे झारखंड में गिरिडीह के पास इस रेलगाड़ी के 2 वातानुकूलित डिब्बों में आग लग गई थी। दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ओडिशा में आज तड़के झारसुगड़ा में कोरापुट हावड़ा समलेश्वरी एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। समलेश्वरी एक्सप्रेस के 9 डिब्बों को कुछ नुकसान हुआ है। संबलपुर झारसुगड़ा मार्ग पर 4 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहने के बाद आज सवेरे 7:30 बजे फिर चालू हो गया। घायलों को झारसुगड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर घाटी में आज पहली रेल दुर्घटना में 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि काजीगुंड के पास बारामूला जा रही रेलगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घायलों को काजीगुंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी से आप हर घंटे समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। मोबाइल फोन पर ताजा समाचार जानने के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें न्यूज और भेज दें 5676744 पर।
सबसे हसी हा हिंदुस्तान, तरक्की की जो राह चुनी उस नाम दिया भारत निर्माण। हुआ स्कूल में दाखिल हर बच्चा, सड़क बनी रास्ता कच्चा, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। रोजगार की लगी झड़ी, हुई रोशन राहें खड़ी खड़ी, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। की ममता को मिला सुकून और पूरे परिवार को स्वाभिमान, हो रहा भारत निर्माण,
भारत निर्माण का सपना बुना, तरक्की हुई कई गुना।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समाचारों की अगली कड़ी के साथ हैं राजेंद्र चुक।
उच्चतम न्यायालय ने आज 2G स्पेक्ट्रम मामले में 5 बड़े कारपोरेट अधिकारियों की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एचएल दातू की पीठ ने यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, स्वान टेलीकॉम के निदेशक विनोद गोयनका और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों हरि नायर, गौतम दोषी और सुरेंद्र पिपारा को तिहार जेल से छोड़ने के निर्देश दिए। इन सभी को 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलके भरने को कहा गया है। इन आरोपियों ने उनकी जमानत की अर्जियां खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसलों को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी थी। इन पांचों को जमानत मिलने से मामले के अन्य आरोपियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इनमें पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोड़ी शामिल हैं, जो 6 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। कनिमोड़ी और 4 अन्य लोगों की जमानत की अर्जियों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है। आज नई दिल्ली में भारत और संयुक्त अरब अमारात में सुरक्षा सहयोग और सजा याफ्ता लोगों के आदान प्रदान से संबंधित समझौते हुए। सजा याफ्ता लोगों के आदान प्रदान के समझौते पर संयुक्त अरब अमारात के गृहमंत्री लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान और भारत की ओर से गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते से संयुक्त अरब अमारात और भारत में सजा याफ्ता लोगों को सजा की बाकी मियाद अपने अपने देश में काटने का मौका मिल जाएगा। भारत की यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमारात के मंत्री ने आपसी सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समझौते से सुरक्षा संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान होगा और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे आतंकवाद, रुपये की हेराफेरी और साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी।
अभी तकरीबन 1200 भारतीय संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे हैं। इन कैदियों में से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने कोई आर्थिक अपराध किया है या फिर संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे थे। इस संधि के बाद ये कैदी अपने परिवार के नजदीक वाले जगहों पर बाकी सजा काट पाएंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ तभी मिल पाएगा जब स्थानांतरण में कैदियों की रजामंदी हो और कम से कम 6 महीने की सजा बच रही हो। सुरक्षा सहयोग संधि के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रशिक्षण, तकनीक और विशेषज्ञों की सेवाएं संभव हो पाएंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं मणिकांत ठाकुर।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले के सिलसिले में बयान देने के लिए आज बंगलौर में विशेष अदालत के सामने पेश हुई। विशेष अदालत के जज बीएम मल्लिकार्जुनैया ने 1145 से अधिक प्रश्नों के उनके उत्तर रिकॉर्ड करने के बाद बाकी प्रश्नों के उत्तर के लिए सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। 66 करोड़ रुपए से अधिक के संपत्ति के इस मामले में जयललिता विशेष अदालत के सामने चौथी बार पेश हुई हैं। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इन प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से देने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। सूत्रों ने कहा है कि सुनवाई आज पूरी हो जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मायावती सरकार की भूमि अधिग्रहण मुद्दे को लेकर कड़ी आलोचना की और उन पर किसानों की जमीन निजी बिल्डरों को देने का आरोप लगाया। बहराइच जिले में विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों से जबरदस्ती जमीन ली गई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया है और संसद में एक ऐसा भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश किया है जो किसानों के हित में है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए राज्य की गैर कांग्रेसी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए श्री गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जमीनी वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं का आम लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है। केंद्र में यूपीए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण राज्य के लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा।
आप हमारे सब प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे वो मनरेगा हो, सब शिक्षा अभियान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, कर्जा माफी हो, इन सब प्रोग्रामों का लक्ष्य आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने का। मनरेगा दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम है। हमने हर एक गरीब व्यक्ति को रोजगार का अधिकार दिया, मतलब जो भी यूपीए सरकार को रोजगार मांगता है कानून कहता है कि उसे रोजगार दिया जाएगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहुल गांधी ने लोगों से संपर्क करने का अपना 5 दिन का कार्यक्रम कल बाराबंकी जिले में 3 सभाओं को संबोधित करके शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि से केवल सत्तारूढ़ दल के नेताओं और बिचौलियों को ही लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए केंद्र ने बुनकरों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है और ये राशि उनके खातों में जमा करा दी जाएगी। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को लागू करने में अनियमितताओं के अपने आरोप को दोहराते हुए श्री गांधी ने कहा कि इस कार्यक्रम का पैसा बिचौलियों और सत्तारूढ़ दल के एजेंटों के हाथों में जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने मानव तस्करी के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में मानव तस्करी के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्स पर्यटन के नाम पर सीमा के आर पार मानव तस्करी की जाती है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस कुरीति के समाधान के लिए सभी स्तर पर अल्प और दीर्घकालिक उपाय किए जाने की जरूरत है। इस सिलसिले में समाचार माध्यम प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के उपायों से भी मानव तस्करी से निपटा जा सकता है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और संबंधित संस्थाओं तथा व्यक्तियों के सलाह मशवरे से एक संबंधित योजना बनाई गई है। अगर इस योजना पर पूरी तरह अमल किया गया तो ये कुरीति रोकी जा सकती है। सम्मेलन के सह प्रबंधक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव राजीव शर्मा ने कहा कि महिलाएं और बच्चे जनसंख्या के 50% हैं और इसमें से भी 40% को मानव तस्करी का खतरा बना रहता है। उन्होंने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार के विचारों और सुझावों को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। आकाशवाणी से हर घंटे समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है।
मुझे मिला स्वामी मान से अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार।
अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार का अभियान दे रहा है स्वरोजगार के लिए ऋण व ऋण अनुदान। भारत निर्माण का सपना बना, तरक्की हुई कई गुना।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक आज वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 501 रन बना लिए हैं। 3 टेस्ट मैचों की इस श्रृंखला के पहले दोनों टेस्ट मैच जीतकर भारत 2-0 से विजयी बढ़त हासिल कर चुका है। मुंबई शेयर बाजार में अब जबरदस्त गिरावट का रुख है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 220 अंक लुढ़क गया। अब से कुछ देर पहले ये 424 अंकों की गिरावट के साथ 15,641 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 123 अंक गिरकर 4,689 पर था। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 32 पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर की कीमत 51.92 रूपये हो गई। एशियाई बाजारों में आज कच्चे तेल के भाव गिरे। अमेरिका में कमजोर आर्थिक वृद्धि के आंकड़े और यूरोप में ऋण संकट की चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। जनवरी की डिलीवरी के लिए न्यूयॉर्क के लाइट स्वीट क्रूड के भाव 53 सेंट गिरकर $97.48 प्रति बैरल हो गए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो जल्दी ही रुपए के चिन्ह वाले 100 रुपए के नोट जारी करेगा। ये नए नोट महात्मा गांधी सीरीज 2005 के अंतर्गत जारी किए जाएंगे। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ डी सुब्बा राव के हस्ताक्षर होंगे। नोट के पिछले हिस्से में 2011 लिखा होगा। पहले जारी 100 रुपए के नोट भी चलते रहेंगे। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और गोवा के मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहेंगे। अभिनेता शाहरुख खान 10 दिन तक चलने वाले इस समारोह का आज शाम उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस उत्सव को परिवर्तन का उत्सव नाम दिया गया है।
इस बार फिल्म फेस्टिवल में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के साथ बनाई गई फिल्में जिनमें 3D और एनिमेशन फिल्में भी शामिल हैं विशेष आकर्षण होंगी। अमेरिका में बनी फिल्मों को एक देश में निर्मित फिल्मों की श्रेणी में रखा गया है जिसमें यह दिखाया जाएगा कि वहां के निर्देशक फिल्म बनाने की कला का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली अंतिम पिक्चर ऑन सैन सू ची और उनके पति माइकल एरी की अद्भुत कहानी पर आधारित द लेडी होगी। इस दौरान फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ ने आकाशवाणी से बात करते हुए देश भर में फिल्मों से संबंधित भाईचारे को फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेकर इसे और सफल बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी इस 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बालाजी प्रभु गांवकर के साथ मैं राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार गोवा।
अब सुनिए स्वास्थ्य और चिकित्सा पर समाचार फीचर।
नमस्कार, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर समाचार फीचर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गैर संचारी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना। हमारे देश में गैर संचारी बीमारियों से 50% से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। इन बीमारियों में डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक और सांस से संबंधित तथा दिल की बीमारियां शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक हमारे देश में दिल की बीमारियों से मरने वाले और विकलांग बन जाने वालों की संख्या सबसे अधिक होगी। पिछले वर्ष सरकार ने गैर संचारी बीमारियों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार इन बीमारियों के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी फैला रही है और क्योंकि हर वर्ष इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इसलिए सरकार ने यहां के हेल्थ पवेलियन से गैर संचारी बीमारियों के बारे में सूचना और जागरूकता फैलाना इस बार की थीम रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के चीफ मीडिया आरएन मिश्रा का कहना है कि यहां पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा आई चेकअप और दूसरी गैर संचारी बीमारियों से संबंधित रोगों की जांच मुफ्त कराई जा रही है।
इस बार जो हमारा थीम है उसी के अनुसार हम मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें खास है डायबिटीज का टेस्ट कराना, ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाना, बॉडी मास इंडेक्स BMI करवा सकते हैं, आंखों का टेस्ट करवा सकते हैं, खास करके जो औरतें 35 साल से ऊपर हैं उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर उसकी भी स्क्रीनिंग हो सकती है, उसके ऊपर सलाह परामर्श आदि बहुत आसानी से मिल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि एम्स और दूसरे बड़े अस्पतालों से बहुत सीनियर डॉक्टर्स जो कि हर विषय की अधिक अनकम्युनिकेबल डिजीज जो है, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, इसके ऊपर जो है वो अपना भाषण देते हैं और भाषण के बाद आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ओपी गुप्ता ने बताया कि ये लोग डायबिटीज के रोगियों की आंखों की जांच कर रहे हैं।
इस टाइम पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं उनका हम कुछ नॉर्मल जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक रिफ्रैक्टिव एरर, किसी को अगर कुछ नजर कम है और चश्मे की जरूरत है तो उनको हम चश्मा जांच करके उनको नंबर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें हम रेटिना की चेक कर रहे हैं, जिससे कि उसमें रेटिना में कोई रेटिनोपैथी डेवलप तो नहीं हो रही है, ताकि अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर सके और पेशेंट को फर्दर गाइड कर सके फॉर द ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम कुछ एल्डरली पेशेंट जो आते हैं नजर उनकी कम हो रही है, वेदर इट इज कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, तो फिर उनको हम अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में बुला रहे हैं फॉर फर्दर चेकअप एंड ट्रीटमेंट, और जो पेशेंट्स को इवन सर्जरी की जरूरत है उनको हम अपने हॉस्पिटल में ऑपरेट भी करेंगे।
इस हेल्थ पवेलियन में गैर परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टर इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। नोएडा के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर पद्मा ने हमें बताया कि इन बीमारियों को कैसे होम्योपैथी के द्वारा इनका इलाज किया जाता है।
आजकल जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथिक से साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और इससे हमारा मेडिसिन का रेट भी बहुत कम होता है, लोगों को बहुत फायदा भी होता है, रोज का हमारा पेशेंट फिगर भी बहुत हो रहे हैं। और आजकल WHO भी बोल रहा है कि जितने सारे अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट में होम्योपैथी का नाम सेकेंड में आया।
कैंसर की तरह की गैर संचारी बीमारियां किसी भी परिवार को वित्तीय और भावनात्मक तौर पर बर्बाद कर सकते हैं। डीनिप केयर नामक स्वयंसेवी संस्था ऐसे रोगियों के परिवारों को हर तरह की सहायता मुहैया करवाती है। इस संस्था के महासचिव डॉक्टर KV हमजा का कहना है कि ट्रेड फेयर में बहुत सारे लोग वॉलंटियर के तौर पर अपने नाम दे रहे हैं।
When all the curative options are exhausted, there is a need for the palliative care, especially in Delhi, where majority of the families are nuclear. There is nobody to look after the bedridden terminally ill patients. So we take care of them, to take care of their emotional parts, to support them socially, to support them medically. That is our role as palliative volunteers. So many people visiting this pavilion and also our stall, and they are ready to become volunteers for us. And also there are referrals for patients as well.
इस पवेलियन में गैर संचारी बीमारियों के बारे में जानकारी, मनोरंजन और सूचना दोनों को मिलाकर दी जा रही है। कठपुतली का नाच और नुक्कड़ नाटक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की डॉक्टर रीटा धर का कहना है कि तंबोला के जरिए भी लोगों को जानकारी दी जा रही है।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में उनको बताने की कोशिश की है हम लोगों ने इनसे। ये हमने ये गेम क्रिएट की है, वो जैसे ए पर अगर कुछ आया एनीमिया तो हम एनीमिया के बारे में उनसे पूछते हैं, उनको जानकारी देते हैं, या अगर बी से डायबिटीज आया है तो डायबिटीज हम बोलते भी हैं, साथ में हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं उस डायबिटीज के बारे में। ऐसे अगर स्ट्रोक आया है स्ट्रोक के बारे में हम बताते भी हैं, उनसे पूछते हैं। जर्द से अगर जर्दा आया है तो जर्दा हम पूछते हैं लोगों से कि कितने लोग खा चुके हैं, इसके आपको परिणाम पता है। जब किसी का हाउसफुल हो जाता है उनको हम 5 या 6 गिफ्ट देते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर शोर शराबे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि मूल्य वृद्धि पर वाम दलों की मांग पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में 5 बड़े कारपोरेट अधिकारियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल में करने संबंधी अपनी अधिसूचना के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।